अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचाळुरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारी व श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गो हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव एव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। रूप चतुर्भुज धर के पधारे हे नाथ नारायण वासुदेव। रूप रूप चतुर्भुज धर के पधारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी हे नाथ व सब जीव तुम में तुम हो सभी में, हे नाथ नारायण वासुदेव। देव सब जीव तुम में तुम हो सभी में, हे नाथ नारायण वासुदेव। देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली सच्चिदानंद घन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, जगज्जननी अम्बे माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मस्वरूप भक्तवृंद, परम हर्ष परम उल्लास का विषय परम पावन परमानंद के ये क्षण, हमारा आपका पुनः पुनः मिलन। कल हम लोगों ने भगवान श्री हनुमान जी का, परम भक्त हनुमान जी का जो है जन्मोत्सव या जयंती मनाई, हनुमान जयंती। पिछले कई वर्षों से हमारा विषय श्रीमद् भागवत के बाल लीला के ऊपर चल रहा था कि किस प्रकार से श्रुतियां जो कहती हैं उन श्रुतियों को लीला के माध्यम से भगवान ने किस प्रकार से करके दिखाया है। मुख्य जो बाल लीला को चिंतन करने का, मनन करने का जो कारण था यही था। तो इस बार जो है भगवान की बाल लीला न लेकर, क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व जो है श्री रामचरितमानस की राम कथा करने के कारण अभी दिमाग में पूरा रामचरितमानस बसा हुआ है, तो इसलिए रिकॉर्ड में जो है अभी श्रीमद् भागवत इतनी जल्दी उतरेगी नहीं। तो इसलिए विचार इस बार ये किया कि दैवी आसुरी संपदा के ऊपर हम लोग विचार करेंगे जो भी दिन 30 तारीख तक। तो भगवान ने 15वें अध्याय यानी जिसको हम लोग पुरुषोत्तम योग कहते हैं उसके उपरांत 16वें अध्याय में भगवान ने दैवी और आसुरी संपदा का वर्णन किया है। तो बहुत ही सुंदर विचारणीय जो है विषय है और बहुत सुंदर तरीके से स्वयं भगवान ने इसका विश्लेषण भी श्रीमद् भगवद गीता में किया है। तो पहले के 3 श्लोक इस अध्याय के जो है दैवी संपदा को निरूपित करते हैं। तो पहले 3 श्लोकों का आप श्रवण करें, फिर उसके बाद चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जमम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्तम् मार्दवम् ह्रीचापलम् तेजा क्षमा धृति शौच शौचम् मद्रोहो नातिमानिता भवन्तिम् भवन्ति संपदम् दैवीम् अभिजातस्य भारतः। जो सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने यहां एक शब्द प्रयोग किया, यद्यपि मनुष्य को परम स्वतंत्र माना गया है किसी भी कार्य को करने के लिए, पुरुषार्थ को करने के लिए, लेकिन भगवान ने जो एक यहां विशेषता रखी है, कहते हैं अभिजातस्य भारत, दैवी संपदा को लेकर के उत्पन्न होता है। ये हमारे जो पूर्वकृत कर्म हैं या संचित कर्म हैं या उन संचित और पूर्वकृत कर्मों से बना हुआ जो प्रारब्ध है उसके अनुसार हमको ये दैवी और आसुरी संपदा की प्राप्ति होती। संपदा शब्द लगाया गया, संपत्ति है ना। तो संपदा का मतलब पहले तो ये समझ लीजिए कि जैसे आप बाजार करने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, तो वहां पर जाने से पूर्व अभिजातस्य यानी पहले से ही लेकर उत्पन्न होता है दैवी आसुरी संपदा को, क्योंकि रावण के अंदर जन्म से ही आसुरी संपदा जो है घुली हुई थी। इसी प्रकार से अन्यान्य जो सात्विक महापुरुष देखे गए या आसुरी देखे गए तो उनके अंदर ये संपदाएं पहले से ही मौजूद थी। अभिजातस्य है तो संपदा है, तो इसलिए जैसे बाजार में जाने से पूर्व आपको जिस जिस प्रकार के सामान खरीदने हैं उसी प्रकार से आप अपने जो है बटुए को या अपने पर्स को उसी प्रकार से उन नोटों से भर लेते। अगर आपको महंगा खरीदना है तो फिर पैसा भी ज्यादा ले जाते हैं, अगर कम खरीदना है तो पैसा भी कम ले जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे यहां परमेश्वर माना गया है या वेदांत की भाषा में कहें तो मुक्ति कहें या जो है आप अपने आप को पूर्णतया स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति कहें, तो चीजें सब एक ही हैं। खाली कहने मात्र का भेद है कि भगवान मिलना अलग है या स्वरूप प्राप्ति अलग है या मुक्त होना एक अलग चीज है, हैं सब एक ही, लेकिन कहने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। तो ये सामान है यानी भगवान को खरीदना है या निज स्वरूप को प्राप्त करना है या मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपके पास दैवीय संपदा का होना आवश्यक है। और उसके बाद है आसुरी संपदा। वास्तविक सत्य तो ये है कि आसुरी संपदा तो हमको मिली मिलाई है, उसमें जो है कभी कमी नहीं आती। आसुरी संपदा के लिए कोई विशेष प्रयत्न प्रयास भी नहीं करना पड़ता, स्वभावतः हमारे अंदर विराजमान है। तो हम लोग पहले जो है भगवान के द्वारा कही गई जो दैवी संपदा है, क्योंकि दैवी संपदा के माध्यम से हमको परमात्मा की प्राप्ति या निज स्वरूप की प्राप्ति, जिसको हम भूलकर अपने आप को एक देह मान बैठे हैं और देह के धर्म को ही हम अपना धर्म मान बैठे हैं, तो इस कारण से हम दैवी संपदा को भूल गए। दैवी संपदा का सबसे पहला गुण है अभयम। तो यहां पर अभयम के ऊपर विचार नहीं करना है, हमको विचार करना है कि अभयम की हमारे अंदर स्थिति क्या है, है ना? अभयम शब्द है, सबसे पहला गुण ही अभयम है, यानी अध्यात्म के मार्ग में, बिल्कुल समझ लीजिए, अध्यात्म के मार्ग में यदि आप प्रविष्ट होना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं और उसमें कुछ उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, यानी परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या जो है निज स्वरूप की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर का भय समाप्त करना होगा, है ना? संसार का भय रात दिन का भय है, और इस संसार के भय में सर्वोपरि भय जो है वो क्या है? मृत्यु भय है, है ना? क्योंकि सारे तो भय हैं ही, सामान चोरी ना हो जाए। जब आप यात्रा में जाते हैं तो आप अपने सामान की तरफ ध्यान देते हैं कि मेरा सामान ठीक है कि नहीं है, चोरी होने का भय रहता है महाराज, है? इसी प्रकार से जब आप कुछ खाते पीते हैं तो आपको बीमार होने का भय रहता है। तो बहुत सारे भय हैं संसार में, सांसारिक भयों की कोई कमी नहीं है, और उसके बाद सर्वोपरि भय है मृत्यु भय। उस मृत्यु के भय के सामने तो महाराज मनुष्य कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। तो अध्यात्म में भय की आवश्यकता नहीं। और सबसे बड़ी महापुरुषों ने जब विवेचना की तो देखा कि वास्तविकता में सत्य ये है कि 84 लाख योनियों में, आपने कभी शायद अनुभव किया हो या ना किया हो, 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही भयभीत रहता है। मृत्यु भय केवल मनुष्य को है, कोई भी पशु पक्षी मरने से डरता नहीं है। देखो भाई एक बात बताओ, इतने दिनों से शेर जो है जंगल में जानवरों को खा रहा है, हैं? आज तक किसी जानवर ने अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की? क्यों भाई, लगता है आपको कहीं दिखाई देता है? कोई मृत्यु भय नहीं, यद्यपि रोज जो है किसी ना किसी को शिकार बनाता है, लेकिन उन जानवरों के अंदर किसी प्रकार का मृत्यु भय नहीं है। मृत्यु भय केवल मनुष्य के अंदर है। चाहे जितना आप अध्यात्म को सुन लो, अगर इस अध्यात्म का आपने अपने अंदर विवेचन नहीं किया है तो आपके कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। जिंदगी भर सुनते रहो तो जब विचार करके आपने देखा महाराज अभयम, तो भय से मुक्त कैसे हो? भाई इतने दिन से आप सत्संग करते 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 बूढ़े हो गए, क्यों जी? इतनी लंबी आयु हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन यदि आज भी आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपसे ये कह दे कि बस एक घंटे के मेहमान हो, क्या दशा होगी तुम्हारी? क्यों भाई, अध्यात्म याद रहेगा? कहां गया सब प्रेमपुरी का सत्संग? क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शरीर से अलग कर ही नहीं पाए। हमने किया क्या, गलती क्या की? हमने वेदांत अपने लिए नहीं पढ़ा, हम शरीर को वेदांत सुनाते रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि आप शरीर से ऊपर उठ ही नहीं पाए, और अभी तक हम अपने आप को जीने मरने वाला मान रहे हैं। जरा एक बात बताओ, ये 16वां अध्याय है और एक बहुत प्रसिद्ध गीता का श्लोक है, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम। सुनाओ सुनाओ सुनाओ, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते। लो जी, ये किस अध्याय का है? सेकंड में, यानी दूसरे अध्याय में भगवान ने सारी कहानी समाप्त कर दी कि तुम जीने मरने वाले नहीं हो। अब बताओ, ये हमने कब पढ़ा? दूसरे अध्याय में। और मैं चर्चा कर रहा हूं सोलहवें अध्याय की, यानी गाड़ी जो है किस स्टेशन से किस स्टेशन पर पहुंच गई। लेकिन आज भी अगर डॉक्टर कह दे कि महाराज बस कितना है तुम्हारे पास समय, एक घंटा, क्या दशा होगी? तो अभयम कहां गया? अभयम, क्योंकि हमने भगवान के जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया के ऊपर विश्वास ही नहीं किया कभी, केवल रटते रहे और पढ़ते रहे। उसके ऊपर ना तो हमने विश्वास किया और ना उसको समझने की कोशिश की। निज स्वरूप की प्राप्ति क्या है? कोई चीज थोड़ी है जो हमको मिलेगी गिफ्ट में, भगवान ला के देंगे डब्बे में पैक करके कि ये तुम्हारी जो मुक्ति है, हैं? हम तो ऐसा विचार करते हैं निज स्वरूप की प्राप्ति का मतलब, जैसे स्वरूप को कोई भगवान डब्बे में बंद करके लाएंगे, लो भाई तुमने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, अब तुमको मैं गिफ्ट में स्वरूप देता हूं तुम्हारा, है? ऐसा ही तो विचार करते हैं, पागलपन। ये निज स्वरूप है, ना जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा, हम कभी हुए ही नहीं, इस शरीर रूप से हम कभी पैदा ही नहीं हुए, और मृत्यु होनी है शरीर की, इसलिए हम मरने, जब हम इस शरीर से रूप से पैदा ही नहीं हुए तो मरने वाले कहां से हैं? हमने कभी इस चीज के ऊपर ना तो विचार किया ना इसके ऊपर कभी विश्वास किया। इसका परिणाम कि हजारों बार जन्म लेने के बाद 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात भी भय ज्यों का त्यों बना हुआ है। जिस समय हमारे अंदर से ये भाव निकल जाएगा, जो सबसे बड़ी समझने वाली अभयम होने के लिए, क्योंकि सबसे पहला कदम ही यही है अध्यात्म में। नंबर एक, दो चीजें हैं, दो स्थितियां हैं, आपको एक रास्ता तय करना है, और रास्ते में जाने से पहले किसी ने आपको बताया कि महाराज ये इतना खतरनाक रास्ता है कि इसमें चोर डाकुओं की कोई गिनती नहीं है। अब जरा सोचो, आप अकेले जा रहे हो और आपके पास 1 लाख रुपया है, आपकी क्या दशा होगी? रास्ता कैसे तय करेंगे आप? क्यों भाई, हैं? परम भयभीत अवस्था में, ना जाने कब कौन आ जाएगा और मुझे लूट के ले जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब दूसरी स्थिति ये है, रास्ता वही है, चोर डकैत वही है, और आपके संग 4 बंदूकधारी दे दिए गए कि भाई इनके संग आप जाओ। अब आपकी स्थिति कैसी है, हैं? आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा, निश्चिंत हैं आप? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि 4 बंदूकधारी मेरी क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। तो अब जरा आप बताओ, खुद अपना अनुभव बताओ कि आपके अंदर भय क्यों आया? क्यों भाई, भय क्यों आया? आप संसार में भयभीत क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। आप निर्भय कब होते हैं? जब आपकी रक्षा के लिए पूरा तंत्र मौजूद हो। तो इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि हमने कभी परमार्थ सत्ता को अपने संग अनुभव ही नहीं किया, जिसका हम लोग रात दिन श्रवण करते रहे, वो अजर अमर अविनाशी तत्व रात दिन जो मेरे अंदर विराजमान है, वो आपकी रक्षा कर रहा है। लेकिन उसकी ना तो सत्ता के ऊपर हमने विश्वास किया, ना उसकी ओर निहारा। इसका परिणाम ये हुआ कि जगत मृत्यु भय तो मृत्यु भय, संसार के छोटे छोटे, है? आपने गीता में केवल पढ़ाई तो है, तथा मानापमानयो, मान अपमान में आध्यात्मिक पथिक जो है अध्यात्म का राही सम रहता है। लेकिन आपको इतना सुनने के बाद भी जरा बताओ क्यों भाई, चाहते हैं यहां बैठे हुए कोई भी कि मेरा अपमान हो? सम्मान चाहते हो या अपमान चाहते हो, है? सब सम्मान चाहते हैं, कोई भी अपना अपमान नहीं चाहता। अब जरा बताओ, यहां पर आकाश में एक शरीर छोड़ के गया हुआ जीव है, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। अब करो उसका सम्मान करो या अपमान करो? करो, कर सकते हो ना? आप उसका सम्मान कर सकते हो ना आप उसका अपमान कर सकते हो, लेकिन वो आपको सबको देख रहा है। हम क्यों भयभीत होते हैं? क्योंकि मान और अपमान किसका होता है? शरीर का। तो इसका मतलब सीधा सा है कि हम शरीर से एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं हुए, शरीर को ही हमने अपना स्वरूप मान लिया है और इसके संपूर्ण धर्मों को हमने अपना धर्म मान लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि भयभीत रहने वाला जो शरीर है, क्योंकि भय तो रात दिन शरीर को है, ये अंग कट ना जाए, हड्डी टूट ना जाए, दुनिया भर की जो परेशानियां सब शरीर के संगी होती। हार पहनाया जाएगा तो आपके गले में पहनाया जाएगा, जीव को कोई हार नहीं पहना सकता, सम्मान नहीं कर सकता, कोई उसको प्रमाण पत्र नहीं दे सकता महाराज कि तुम जो है बड़े भारी ज्ञानी हो, परमात्मा के ध्यानी हो, कोई सर्टिफिकेट उसको नहीं दे सकता। ये सब शरीरों को दिए जाते हैं और जब तक हम इस शरीर के नाटक से अलग नहीं होंगे तब तक पहला दैवी संपदा का जो गुण अभयम है ना, दैवी संपदा का जो पहला, जो अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, यदि आपको अपने परम रक्षक भगवान का अनुभव अपने संग होगा, जैसे जंगल में प्रवेश होने वाले व्यक्ति के संग चार मौजूद जो गार्ड हैं, जो रक्षक हैं, उनको सामने देखने के कारण वो अपने आप को पूर्णतया सुरक्षित अनुभव कर रहा है, उसको बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा कि मैं जो है किसी के द्वारा लूटा जाऊंगा, क्योंकि चार चार बंदूकधारी मेरी रक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम अपनी आत्मसत्ता का, परमार्थ सत्ता का अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि वो परमात्मा मेरे संग ही नहीं है बल्कि मेरा स्वरूप ही है, वो तो खैर चलो बात की बात है, लेकिन कम से कम अपने संग अनुभव करना तो प्रारंभ करें। जब हम उस परमात्मा को अपने संग रात दिन, जिस प्रकार से जंगल में जाने वाला व्यक्ति अपने आप को पूर्णतया सुरक्षित अनुभव करता है, उसी प्रकार से अध्यात्म का पथिक जो है पूर्णतया उसके हाथ में जाने के बाद सुरक्षित अनुभव करता है। और इसके जो उदाहरण हमारे यहां अध्यात्म मिलते हैं, छोटे छोटे बालकों के रूप में देखा जाता है। हम आप तो बूढ़े हो गए महाराज सुन के, प्रहलाद उदाहरण मिलता महाराज प्रहलाद का, हनुमान जी गिनते जाओ महाराज, और वर्तमान में मीरा। मीरा के लिए महाराज विष का प्याला भेजा गया, राणा ने विष का प्याला भेजा, और ऐसा नहीं कि धोखे में भेजा, बिल्कुल डंके की चोट पे भेजा कि ये जहर है और जहर तुमको पीना पड़ेगा, या तो मेरे से विवाह करो और या फिर जहर को ग्रहण करो। ऐसा नहीं कि धोखे में दिया गया मीरा को कि तुम ये पी लो, दूध है या कोई विशेष पेय पदार्थ है इसको पी जाओ तो धोखे में मार देना, बिल्कुल डंके, क्योंकि राजा था महाराज, इसलिए उसने डंके की चोट पे वो चीज दी कि ये जहर पियो या मेरे संग विवाह करो। अगर मीरा के अंदर भय होता तो वो राणा से विवाह करती या जहर पीती? क्यों भाई हैं? होता है कि नहीं होता? मीरा जो है राणा के संग विवाह कर लेती, लेकिन उसको अपने जीवन मृत्यु की कोई चिंता नहीं है, उसको अपने सिद्धांत की चिंता है, उसको अपने प्रेम की चिंता है कि मैंने प्रेम भगवान से किया है और भगवान के अलावा मैं किसी का वरण नहीं कर सकती। इस सिद्धांत को मानने के कारण मीरा ने सहर्ष प्रभु को अपने संग अनुभव करते हुए उस जहर को स्वीकार किया। मीरा ने भगवान से ये नहीं कहा कि ये जहर मैं पीने जा रही हूं, आप मेरी रक्षा करना, जैसे हम लोग शांति पाठ में बोलते हैं, हैं? शांति पाठ में बोलते हो कि नहीं रोज? क्या बोलते हो? हैं? अवतुमाम अवत वक्तारम, है ना, हमारी रक्षा करो और सामने जो बोलने वाला पागल है उसकी भी रक्षा करो, है? तो कहने का मतलब ये है कि रक्षा का बहुत जो है लंबा चौड़ा विश्लेषण है। तो रक्षा के लिए हमारे यहां बहुत कुछ है, लेकिन महाराज जब हम अभयम, जब हम इस जिसको कहते हैं साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार शब्द है, जब आप इस चीज का अनुभव करेंगे, ना जायते म्रियते वा कदाचिन, मैं बिल्कुल भी जीने मरने वाला नहीं हूं, जो आप पढ़ते हो मीरा जो है बिल्कुल साक्षात उसको कर रही है महाराज, क्योंकि वो जानती है मेरा प्रेमी अमर है, जब प्रेमी अमर है तो महाराज वो भी तो अमर हो गई है। तो मीरा ने जहर को स्वीकार कर लिया, अब बताओ वो जहर क्या मार पाया मीरा को, ये विशेषता हुई वहां पर। यद्यपि जहर जो है शरीर को मारता है, लेकिन मीरा को भौतिक रूप से भी वो जहर मार नहीं पाया, शरीर का धर्म भी विपरीत हो गया हमारा, केवल इस विश्वास के कारण कि मेरे रक्षक परमात्मा हैं, अपने कृष्ण के ऊपर परम विश्वास, क्योंकि रात दिन वो उस उनसे प्रेम करती थी, इसका परिणाम था परम विश्वास, और परम विश्वास के कारण मीरा को वो भयंकर जहर भी मृत्यु नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि मीरा ने उस जहर को स्वीकार ही नहीं किया महाराज। देखो स्वयं मीरा जी ने अपने पद में लिखा, जहर का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हांसी रे। जरा कल्पना करो, ये पद सुनना बड़ा आसान है, गाना बड़ा आसान है, और अभयम, आप गीता पढ़ने लगो थोड़े दिन बाद आपको ये श्लोक याद हो जाएगा, अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्था, रटते रहो। लेकिन क्या पहले ही शब्द का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा? क्या हमने उस अभयम को स्वीकार किया? तो जरा विचार कीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपके हाथ में एक जहर का कालकूट विष का प्याला दे दिया जाए, कल्पना करो जरा थोड़ी देर की, तो आपके हाथ में क्या है? जहर है भयंकर, और पीते ही तुम मरने वाले हो। अब जरा बिल्कुल हृदय से बताओ, उसको हंसते हुए पियोगे या रोते हुए पियोगे? क्यों भाई, आएगी किसी के चेहरे पे हंसी? क्योंकि इसके पीते ही मैं फिर दुनिया में, जरा हंसो अब क्यों भाई, आएगी हंसी? पीवत मीरा हंसी रे, क्यों हंसी? प्रभु तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है, भगवान की लीला को देखकर वो हंस रही है कि कभी तुम जो है मिश्री भेजते हो, कभी तुम जहर भेजते हो, इसलिए तुम जानो और तुम्हारा कार्य जाने। अभय होकर मीरा ने उस जहर को स्वीकार किया, नाग को स्वीकार किया महाराज। हम इतना वेदांत पढ़ने के बाद भी, लोग कहते हैं ना वेदांत, वेदांत का मतलब ही अंतिम ज्ञान है। वेदांत शब्द का क्या मतलब है? दो शब्द है ना, वेद और अंत। तो साधारण परिभाषा तो ये चलती है महाराज कि वेद के अंतिम भाग होने के कारण वेदांत कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेद का अंत यानी जानने का अंत, इंद्रिय जनित जितना भी ज्ञान है, बुद्धि से इंद्रियों से जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं भगवत चिंतन के लिए, उसको वेदांत कहते हैं। क्योंकि परमात्मा मन बुद्धि चित्त से परे है, वहां पर इन चीजों की कोई गति नहीं है। अगर इनकी गति हो जाएगी तो परमात्मा हमारा सीमित हो जाएगा, फिर उसको हम अनंत नहीं कह सकते, है ना? बुद्धि की एक सीमा है, इंद्रियों की एक सीमा है, मन की भी सीमा है, लेकिन वो असीमित है, अनंत है। तो अखंड और अनंत होने के कारण उसको महाराज सीमा में कैसे बांध सकते हैं? है? जैसे किसी को महाराज 200 करोड़ रुपए का पेमेंट होना हो, और महाराज वो एक छोटा सा जो है छोटा सा ब्रीफ केस लेके आए, बोले इसी में डाल दो, क्या करोगे? है? अरे आप उससे यही तो कहोगे, अरे भाई इतना पैसा है, इसको इसमें कहां से डालेंगे? तो उसी प्रकार से वो अनंत परमात्मा को आप बुद्धि से इंद्रियों के माध्यम से समझ नहीं सकते, और यही गलती हम करते हैं। जानने का जो अंत है, वेदांत को ही हम सर्वोपरि ज्ञान मान लेते हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये तो अपने आप को रास्ते में लाने का तरीका है कि हम अपने आप को सर्व सबसे पहले अभयम करें। पहला जो है सूत्र है ये ब्रह्म सूत्र, समझ लो इसको। अगर अध्यात्म में आपको गति चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को निर्भय बनाओ, भय रहित बनाओ, और ये तभी संभव है जब आप हर क्षण प्रतिपल सोते जागते किसी भी परिस्थिति में ये अनुभव करोगे कि परमात्मा ही मेरे संग है। क्योंकि अभी तक तो परमात्मा का अनुभव हमको हुआ कि नहीं हुआ? परमात्मा का अनुभव जिस दिन हो जाएगा पागल हो जाओगे मीरा की तरह, लोग कहें मीरा बावरी हो गई, है ना, पागल हो जाओगे महाराज। क्योंकि जैसे कोई जो है हीरे को देखकर, बहुमूल्य हीरा आपके सामने रख दिया जाए तो उसको देख के जैसे लोग पागल हो जाते हैं, वैसे ही परमात्मा का दर्शन करने के पश्चात, और है कहां, मेरा अपना आप ही होकर बैठा हुआ मेरे अंदर, वो ढूंढना भी तो कहीं नहीं। लेकिन हम अपनी सत्ता का अनुभव स्वयं नहीं कर पाते, इसलिए हम कभी निर्भय नहीं हो पाते, भयभीत रहते हैं हर समय, 24 घंटे भयभीत। सबसे पहले उसका तरीका ये है, एक दो कष्ट नहीं, हनुमान जी के रास्ते में, प्रह्लाद के रास्ते में जो अध्यात्म का मार्ग उन्होंने चुना, परमेश्वर के भजन का मार्ग जो उन्होंने चुना, जरा बताओ एक बाधा आई कि हजारों बाधाएं आई हैं? कोई गिनती नहीं महाराज, और सब मृत्यु तुल्य कष्ट वाली हैं। दो तरीके की बाधाएं हैं, एक सुखरूप बाधा, एक दुखरूप बाधा। ऐसा नहीं कि बाधा केवल दुखरूप ही होती है, सुखरूप भी बाधा है। जब हनुमान जी महाराज चले लंका की ओर, उन्होंने कहा मैं जाता हूं सीता का पता लगाने, जैसे ही चले वैसे ही महाराज एक सुंदर सा पर्वत निकला उस समुद्र के भीतर से, और उस मैनाक पर्वत ने कहा कि हनुमान जी, सुंदर सुंदर बगीचे महाराज, मधुर मधुर वहां पर जो है वायु बह रही संगीत की ध्वनि की तरह, और ऐसे सुंदर सुंदर फल के जो है वृक्ष लगे हुए, ऐसा सौंदर्य लेके वो मैनाक पर्वत वहां प्रकट हुआ। और उसने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप इतना लंबा कार्य कर रहे हैं छलांग लगाने का, थोड़ा थक गए होंगे, विश्राम कर लीजिए। सुख रूप जिसको कहते हैं बाधा, अगर हमारे जीवन में ऐसी सुख रूप बाधा आ जाए तो क्या मैं उसका उपयोग करूंगा या उसको छोड़ूंगा? तो किससे सीखोगे? हनुमान, तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक मैं राम का कार्य नहीं कर लूंगा तब तक मुझे विश्राम के लिए समय नहीं है। ध्यान देना, हम अभय क्यों नहीं हो पाए? अभी तक हमको ना जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराण। शाश्वत हैं आप, मरने जीने वाले नहीं हैं। प्रलय हो जाए तो, कितने प्रलय हो जाएं, ये धरती मटिया मेट हो जाए तो भी आपका कुछ भी बिगड़ने वाला, इतनी सी बात हमको क्यों समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि अभी भी हम अपने आप को ये जो है 3.5 हाथ का कैप्सूल जो है शरीर रूपी, इसको ही अपना आप मान बैठे हैं, और ये जड़ता हमारी बुद्धि से दूर नहीं हो रही है। इसलिए आपको अपमान से डर लगता है, इसलिए आपको, इसीलिए हमारे यहां हजारों उदाहरण दिए गए, जड़ भरत के उदाहरण दिए गए, हनुमान जी के उदाहरण दिए गए। जरा विचार करो थोड़ी देर के लिए, हम लोग हनुमान जयंती मनाते हैं, बड़े प्रेम से मना लेते हैं महाराज, जरा हनुमान जी के ऊपर विचार कीजिए थोड़ी देर के लिए। जिस समय हनुमान जी को लंका में बांध करके, नागपाश में बांध करके, ब्रह्मपाश में बांध करके रावण के समक्ष ले जाया जा रहा था, हनुमान जी के ऊपर लंका के राक्षस कूड़ा करकट फेंक रहे थे, और छोटे छोटे बच्चे जो है मलमूत्र विसर्जन कर रहे थे। जरा विचार कीजिए, अगर आपकी थोड़ी देर के लिए भी ये दशा कर दी जाए, क्यों भाई? और हनुमान जी ऐसी अवस्था में मुस्कुरा रहे थे, हमारे समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने केवल रटने का ठेका लिया, तथा माना सुख दुख है, माना मान अपमान, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा माना, रट लिया। रटने में मजा आती है, लेकिन रटने से काम नहीं चलेगा महाराज। इन्होंने किया, राजा का पुत्र होने के बाद भी प्रहलाद को महाराज जो यातनाएं दी गई, इनमें से एक भी यातना अगर आपको दे दी जाए तो क्या हम भगवान को याद करेंगे? विचार किया कभी आपने? जो यातना हनुमान जी को राम कार्य में दी गई महाराज, जरा सोचो, अगर हमारे आपके ऐसे धैर्यहीन व्यक्ति होते तो उसी समय राम के कार्य को छोड़ देते। प्रभु, मैं तो आपका कार्य करने के लिए आया हूं और मेरे ऊपर तो यहां पर गंदगी फेंकी जा रही है, मेरा अपमान किया जा रहा है। तो महाराज फिर ये शरीर का जो भाव उनका समाप्त नहीं होता। हनुमान जी शरीर से बहुत ऊपर उठ चुके थे और इसका परिणाम था कि महाराज उनको जो है अपने शरीर के रूप को बदलने का भी क्या प्राप्त हो गया? बल प्राप्त हो गया महाराज, है ना। देखो, जो स्थिति हनुमान जी की वही स्थिति मीरा की महाराज, नहीं तो जहर तो जहर ही है और उसको शरीर को समाप्त करना ही करना है, लेकिन जब हम पूर्णतया आध्यात्मिक आश्रय लेते हैं तब वहां पर ये संसार के नियम कानून लागू नहीं होते हैं महाराज। ये संसार के नियम कानून वहां पर लागू होते हैं जहां पर हमारा आपका केवल और केवल मात्र रिश्ता शरीर से होता है। जब आप अपने शरीर को अध्यात्म पढ़ाएंगे, जो गलती हम लोग करते हैं, अपनी बुद्धि को जब आप पढ़ाएंगे, जब अपनी इंद्रियों को आप पढ़ाएंगे, तो इसका परिणाम ये होगा कि हमारी सीमा रेखा समाप्त नहीं होगी और जो है हम इसी शरीर के बंधन में बंधकर जब हम अध्यात्म का चिंतन करेंगे तो बरसों बरस का चिंतन हो जाने के बाद भी, सब कुछ याद हो जाने के बाद भी हमारा भय समाप्त नहीं होता। एक बात बताओ, भगवान श्री राम ने रावण को कहां मारा है? लंका में मारा या अयोध्या में मारा? लंका में। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को कहां मारा? मथुरा में जाकर। अच्छा, मैं आपको भेजूं कि ये बहुत भयंकर डाकू है, जाओ इसके घर में चले जाओ, मारना तो छोड़ दो, खाली मैं आपसे ये कह दूं क्या है ये, हाँ, भयंकर डाकू है, भयंकर क्रिमिनल है, और आपसे कहूं जाओ इसके घर हो आओ, क्यों भाई? कैसे जाओगे? निर्भय जाओगे या भयभीत जाओगे? हैं? जाओगे निर्भय? और हनुमान जी रावण के दरबार में कैसे बैठे हुए हैं? निर्भय बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका राम पर दृढ़ विश्वास ही नहीं है, उन्होंने राम को समझ भी लिया है। हमने पहली बात तो राम को समझा ही नहीं, और दूसरी बात, हमारा राम में विश्वास भी नहीं है। क्योंकि अगर राम में विश्वास हो जाए, अगर उस परम सत्ता में विश्वास हो जाए, राम क्या है? अखंड है, अनंत है, हैं? अजर है, अमर है, अविनाशी है। अगर इन बातों के ऊपर आपको विश्वास हो जाए तो क्या आपको कोई भय रह जाएगा? अरे भाई, ऐसा सिक्योरिटी गार्ड जो अजर अमर अविनाशी, जिसके ऊपर गोली बंदूक किसी चीज का असर नहीं होता, यहां तक कि परमाणु हथियार का भी असर नहीं होता, तो महाराज ऐसी अगर सिक्योरिटी, ऐसी रक्षा आपको मिल जाए तो क्या कोई भय होगा? हैं? जिसके ऊपर एटम बम का भी असर ना होता हो, हैं? अरे भाई, गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक और भी तो है ना, ये ऐसा क्यों? अरे स्टूडेंट पीछे कैसे चले गए, आगे आके श्लोक बोलो। हाँ, तो विशेष विशेष स्टूडेंट है सब वेदांत वाले। तो कौन सा है? ना चकले दयन तापो ना शोषयति। हाँ, ध्यान देना, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, यानी एटम बम का भी असर आपकी आत्मा के ऊपर होने वाला नहीं है। तुम एटम बम से भी मरने वाले नहीं हो, लेकिन तुमको तो महाराज एक चूहे से भी क्या लगता है,
डर लगता है।
क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि हमने अपने राम का अनुभव ही नहीं किया है, उस परम सत्ता को कभी अपने अंदर। हनुमान जी से जब पूछा गया महाराज राम कहाँ हैं, तो हनुमान जी ने क्या बताया, सामने सामने बैठे थे भगवान, कहते प्रभु आप सामने हो। हनुमान जी ने नहीं कहा आप सामने हो, बोले यहां हो। हमने कभी हनुमान जी की तरह अपने अंदर उस आत्मसत्ता का अनुभव किया ही नहीं, इसलिए हम जन्म मृत्यु के भय से भयभीत रहे। केवल मृत्यु भय से भयभीत नहीं है, आप जरा एक और नाटक देख लो अपने जीवन का। वेदांत तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन ये थोड़ा सा खोटा वाला वेदांत है। कैसा वेदांत है अब जरा बताओ, अगला जन्म आपका गाय के रूप में हो या सुअर के रूप में? क्यों भाई, क्या बनना चाहोगे? हैं? बड़ी गंभीर समस्या है, हैं? सब क्या बनना चाहते हैं? गाय बनना चाहते हैं। कोई भी सुअर नहीं बनना चाहता। अब जरा बताओ भगवान ने किस रूप में अवतार लिया था? अभयम, ये है अभयम स्थिति। हर चीज प्रभु ने हर चीज स्वीकार की, मत्स्य बने, कच्छप बने, हैं, बारह बने, मारा है, सुअर के रूप में आए भगवान। क्यों? यथा योग्य अवस्था आवश्यकता के अनुसार इस नाटक को करना सीख लो। ये सब क्या है, जगत नाटक ही तो है, ये आपको अभी नाटक लगता नहीं, सत्य नजर आता है। इसका परिणाम है आप सम्मान चाहते हो, अपमान नहीं चाहते, आप सुख चाहते हो, दुख नहीं चाहते, आप अच्छी अच्छी चीजें चाहते हो, खराब में आप जाना नहीं चाहते, अपने मन के अनुसार आपने उसको खराब समझ रखा। तो वास्तविक सत्य ये है, परमेश्वर को किसी भी चीज से भेद नहीं है, केवल हमारा आपका भाव है। भगवान को सब स्वीकार है। अच्छा बताओ, भगवान का कोई अवतार आपने ऐसा सुना जिसमें भगवान ने गाय रूप में अवतार लिया हो? क्यों भाई, है कहीं सुना है? नृसिंह बने, सिंह क्या होता है, मांसाहारी की शाकाहारी, मांसाहारी, नृसिंह बने, कच्छप बने, कच्छप भी तो हमारे यहां बहुत शुद्ध जानवरों में नहीं आता है, अशुद्ध जानवरों में माना गया, क्योंकि वो बहुत ही दुर्गंधी युक्त पदार्थ छोड़ता। आप लोगों ने कभी कछुआ पाला नहीं होगा, लेकिन वो कच्छप जो है दुर्गंधी युक्त पदार्थ को छोड़ने के कारण बहुत शुभ जो है जानवरों में नहीं गिना जाता जीव में। तो कच्छप में, कच्छप के रूप में, मछली के रूप, मछली से सुगंधी आती, दुर्गंधी आती, भगवान मछली बने महाराज, लेकिन गाय बने कहीं पर। लेकिन आपको डर लगता है, क्या बनना पसंद करोगे, गाय बनना पसंद करोगे या अन्य योनियों में जाना? तो देखा जाता है कि ये भय आपका मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। और पहली सीढ़ी ही यहां पर भगवान ने अर्जुन से कही कि महाराज तुम क्या खरीदने जा रहे हो? बोले महाराज सोने का हार। तुम्हारे पास कितने कितने रुपए के नोट हैं? बोले जितने भी 2 रुपए 1 रुपए के नोट इकट्ठे किए थे सब मैंने ले लिए। क्यों भाई, सोने का हार खरीदने जा रहे हो और अर्जुन के बटुए में कौन से नोट हैं, 2 रुपए के और 1 रुपए के? क्यों भाई, मिल जाएगा, हैं? मिलेगा कुछ? पूरा बटुआ नहीं, बल्कि पूरी जो है बोरी भरी हो तो भी वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से महाराज, जब तक आप अपने आप को अभय पद में स्थित नहीं करेंगे, ये संपदा है, दैवी संपदा है महाराज, निर्भय। ये जितने भी भक्त या जितने भी ज्ञानवान, नचिकेता, अगर आप श्रुतियों में जाएं, नचिकेता ने महाराज जो है अपने पिता को ज्ञान दिया, कि ये जो आप जरा जीर्ण गायों का दान कर रहे हैं, इनका परिणाम जानते हैं? आनंदा नाम तेलों का साग छत्ते दत्त, जो देता है वो महाराज जाता है नरक में। तो ऐसे लोगों में आप जाएंगे, अपने पिता को ही ज्ञान नचिकेता दे रहे हैं श्रुतियों में। पिता को गुस्सा आ गया, बोले आप मुझे किसको देंगे? इतना गुस्सा आ गया पिता को कि कोई अपने पुत्र का भी दान करता है। लेकिन जब बार बार नचिकेता ने भड़काया तो अंत में उनके मुख से जो है निकल गया कि जाओ मैं तुमको मृत्यु को देता हूं। कोई भय नहीं मारा है, निर्भय। नचिकेता ने उस मृत्यु को सहर्ष स्वीकार किया कि नहीं किया? और उस निर्भयता के कारण गिफ्ट में क्या मिला नचिकेता को?
क्यों भाई,
क्या मिला? अरे ब्रह्म ज्ञान मिला कि नहीं मिला? कितना महाराज विवेचना हुई, कितनी दोनों के मध्य में वार्तालाप हुआ। यमराज ने कहा कुछ भी मांग लो संसार की वस्तु, लेकिन ब्रह्म ज्ञान मत मांगो, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। जब देखा यमराज ने कि महाराज ये तो बिल्कुल अभय, कोई इसको भय नहीं है किसी चीज का, तब जाकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई नचिकेता को। महाराज अभय हो जाने के बाद, चाहे आप श्रुतियों में जाओ, चाहे आप जो है स्मृतियों में जाओ, चाहे आप अपने भक्तों की कथाओं में जाओ, ऐसा नहीं है कि भक्ति और वेदांत कोई अलग चीज है। जितने आपको भक्त मिलेंगे गिनते जाओ लाइन से, सब निर्भय, किसी के अंदर कोई भय नाम की वस्तु नहीं दिखाई देती कि जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा। हनुमान जी लंका जा रहे हैं, वहां क्या उनको कोई भगवान ने जो है दिया था? आप कहीं बाहर जाते हो तो अपने ठहरने की खाने की कितनी व्यवस्था करते हो? क्यों भाई, है दुनिया भर की व्यवस्था करने के बाद तब हम अगला आगे कदम बढ़ाते हैं। हनुमान जी के लिए तो महाराज वहां कुछ था ही नहीं, एक ऐसे अज्ञात प्रदेश में भगवान का कार्य करने जा रहे थे जहां ना उनका रहने का ठिकाना था, ना वहां उनका भोजन का ठिकाना था। ऐसी महाराज अभयम स्थिति कहलाती है, जब आपको क्षण प्रतिक्षण किसी भी चीज का कोई भय ना हो कि मेरा पेट कौन भरेगा, मुझे वस्त्र कौन देगा, मुझे इस प्रकार के जो सांसारिक भय जो कहलाते हैं, पहले इनसे ऊपर उठा जाए, और उसके बाद जो अंतिम सबसे बड़ा भय है जिसका नाम मृत्यु भय, वास्तविक सत्य का जब आपको अनुभव होगा तब महाराज आपका पहला कदम माना जाएगा अध्यात्म में। ये आखिरी नहीं है, जब आप मृत्यु भय से रहित हो जाओगे और उस अजन्मा अविनाशी तत्व को अपने संग हर समय अनुभव करोगे कि वही मेरा, क्योंकि मामैव अंशो जीवलोके जीव भूत सनातना, जो वो है उसका अंश मैं हूं, उसमें मुझमें कोई अंतर नहीं। जब वो अविनाशी है तो मैं भी अविनाशी हूं, जब वो अखंड है तो मैं भी अखंड हूं, जब वो शांत है तो मैं भी शांत हूं, क्योंकि जब उसका अंश है। अरे भाई गेहूं का अंश गेहूं ही तो होगा, कोई अलग चीज तो नहीं हो जाएगी। तो जिस प्रकार से जो वस्तु है उसका अंश भी वही होता है, सूर्य और सूर्य की किरण में जो भेद नहीं है, उसी प्रकार से मुझ परमात्मा में, मेरे अंदर विराजमान परमात्मा में और मुझ में कोई भेद नहीं है। अज्ञान वश में जो शरीर के धर्मों को अपना धर्म मान बैठा हूं, जब आप बारम्बार इस प्रकार से अपने शारीरिक धर्मों का अपने अंदर विवेचन करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि जो ये भय वाली स्थितियां हैं ये सब शरीर की हैं, और ये शरीर खोल मात्र है, ये आखिरी सत्य नहीं है। इसको जब आप आखिरी सत्य मान लोगे तो सारा जीवन हमारा इस नश्वर शरीर को सुखी दुखी करने में ही निकल जाता है। आपको दिखाई देगा कि हम सारा का सारा जीवन केवल इसी के सुख दुख की ही व्यवस्था में निकाल देते हैं, और अंतिम परिणाम यह है कि जिस स्थिति से कोई भी बचने वाला अवश्य में स्वीकार करनी ही पड़ेगी, चाहे आज और चाहे कल। इसका तो वही होना है जो आज तक सबका हुआ है। तो हम अपने वास्तविक स्वरूप की ओर निहारने की चेष्टा क्यों नहीं करते? जो अखंड है, अनंत है, शाश्वत है, प्रकाशमय है। शरीर को तो महाराज भोजन, गहने, कपड़े, ना जाने कितनी चीजों की आवश्यकता है प्रकाशित करने के लिए, लेकिन तुम्हारी अपनी आत्मा को प्रकाशित करने के लिए किसी भी बाह्य वस्तु की आवश्यकता, जिस दिन आपका ये विचार प्रगाढ़ होगा उस दिन आप अभय होकर इस संसार में विचरोगे। और जैसे एक फुटबॉल का खिलाड़ी फुटबॉल को लात मारता है, वैसे ही संसार को लात मारकर खेलोगे, अन्यथा भयभीत होकर ये संसार तुमको खेलेगा। उल्टी कहानी है, संसार आपको खेलेगा और रात दिन आंसू बहाते, हाय हाय करते इस दुनिया में रहोगे और फिर चले जाओगे। मर्जी आपकी है, समय समाप्त हो चुका है। सत्व संशुद्धि कल जो है सत्व संशुद्धि के ऊपर विचार करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।